समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM। वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट्स, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. The government to invest 10 lakh crore rupees in highway development projects over the next 2 years with special focus on northeast, says Union Minister Nitin Gadkari.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंबेडकर जयंती के अवसर पर कल हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
Center closely monitoring the situation in West Bengal's Murshidabad assures all possible assistance, including deployment of additional manpower.
देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी, बोहाग बिहू, पोइला, बोईशाख और मिशादी के रूप में पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं।
President, Vice President and Prime Minister pay homage to martyrs of Jallianwala Bagh.
और IPL क्रिकेट में दिल्ली में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे।
And time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about Baisakhi and World Sarkoi Doses Day.
आज मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी है छाई, खुशियों के त्योहार बैसाखी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
April brings with it one of India's most vibrant and culturally rich festivals, Baisakhi. Traditional harvest festivals are being celebrated in different parts of the country from today. People of Punjab are celebrating Baisakhi, while Keralites call it Vishu. In West Bengal, it is celebrated as Poila Boishak, in Assam as Bohag Bihu. People in Tamil Nadu observe the festival as Puthand. While each festival follows its own unique customs and traditions, they all share a common spirit of gratitude and new beginnings. Akarshita, Baisakhi, also referred to as Mesh Sakranti, marks the beginning of the solar calendar as the sun transitions into Mesh Rashi, the first of the 12 zodiac signs. This day also coincides with several other regional spring festivals across India that celebrate the onset of the harvest season.
बैसाखी का पर्व आज पूरे देश में उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर का न केवल सांस्कृतिक महत्व है बल्कि धार्मिक महत्व भी है। 1699 में इसी दिन 10वीं गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन सभी जातिगत भेदभावों को समाप्त कर एकता का संदेश दिया था। ये पर्व सिखों के लिए एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत और धार्मिक सिद्धांतों के पालन का दिन है। ये त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बैसाखी से ही राज्य के किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। बैसाखी पर सिख धर्मावलंबी गुरुद्वारों में विशेष पूजा और अरदास करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। लोग इस दिन गुरु के बताए मार्ग पर चलने और धर्म के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करने का अवसर मानते हैं। बैसाखी का पर्व सिख धर्म के लिए वो समय होता है जब वे अपने गुरु की शिक्षा और खालसा पंथ के महत्व को मानते हुए एकजुट होते हैं और समाज में शांति, भाईचारे और समानता का प्रचार करते हैं। आज पूरा देश जब इस त्यौहार को मना रहा है, उसी समय पूरा देश 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को भी याद कर रहा है.
At its heart, Baisakhi is an agrarian celebration. It marks the end of the Rabi crop season and the beginning of the Kharif cycle. For farmers in Punjab and across northern India, it's a time to offer thanks for a bountiful harvest and pray for continued prosperity. Fields are full of wheat ready for harvest and villages come alive with celebrations filled with music, dance and feasting. For many in Punjab, Baisakhi is also the start of a new year. Much like how people celebrate January 1st elsewhere, Punjabis use this day to reflect, reconnect and restart. Families clean their homes, prepare traditional dishes and dress in their festive best. It's a time to forgive the past grievances, make new memories and embrace fresh beginnings. In Punjab, in addition to the cultural importance, like you mentioned, Akarshita, Baisakhi has the religious significance also, as on this day in 1699, the 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, founded the Khalsa Panth. As the nation is celebrating the festival, at the same time, it is also remembering those killed in the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in the year 1919. More from our correspondent.
Celebrations of Baisakhi are going on all around. Sea of devotees in colorful attires are paying obeisance at Gurdwara Takht Shri Keshgarh Sahib, Anandpur Sahib, where the Khalsa Panth was founded on this day 326 years ago.
Ahobal Gobind Singh, aape gur chela, aape gur chela.
They are also visiting Shri Harmandir Sahib in Amritsar and Takht Shri Damdama Sahib in Talwandi Sabo in Bathinda, besides other Gurdwaras, and are listening to the holy Gurbani. Langars and chabils are being organized across the street. Farmers are celebrating the day by formally starting harvesting the golden wheat crop standing in their farms after praying to God for Sarbada Pala. The respectful nation is also remembering hundreds of those innocents who were massacred by the British Army officer Dai in Jallianwala Bagh, where they assembled on Baisakhi in 1919. Family members of those killed here, along with hundreds of others, are paying tributes to them. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
People in Tamil Nadu will be observing Puthan tomorrow. The day celebrated as the Tamil New Year with great zeal and intensity on the first day of the Tamil month, Chittirai. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. In her message, the President said these vibrant festivals inspire people to work with commitment and dedication towards the development of the nation. She highlighted that these festivals symbolize the country's rich social traditions and unity in diversity. The President said that through these festivals, the nation honors the hard work of country's farmers and expresses its gratitude to them. On the occasion, Vice President Jagdeep Dhankar called upon people to embrace the spirit of renewal, prosperity and unity, which the festivals represent.
राष्ट्रपति मुर्मू ने 1919 में इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए कहा है कि उनका बलिदान देश की स्वतंत्रता और संग्राम की लड़ाई को मजबूत किया है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वीर आत्माओं का बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों की अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी.
President Murmu recalled the sacrifice made by freedom fighters on the day in 1919, stating that their sacrifice strengthened the flow of country's freedom struggle. And today is the World Sarcoidosis Day. It is observed on this day, that is 13th of April, and is dedicated to raising awareness about sarcoidosis, a rare disease that affects various organs, particularly the lungs and lymphatic system. The purpose of the day is to inform the public about the symptoms of sarcoidosis, its diagnosis, treatment and support for patients suffering from this condition. So what is this condition? It is an inflammatory disease that causes the formation of granulomas, small inflammatory lumps in various organs. This can impair the normal functioning of the organs such as lungs, heart, liver, eyes and others. The exact causes of the sarcoidosis are not fully understood, but it is believed to develop as abnormal immune system response to infections, toxic substances or other factors. The symptoms include fatigue, night sweats, coughing, weight loss, fever, swollen lymph nodes. If the condition affects the eyes, symptoms usually include dryness, redness and pain.
और आज हम बात करेंगे कि हम ये दिन क्यों मना रहे हैं. तो सार्कोइडोसिस के बारे में आज हम जनता को सूचित करते हैं, आम जनता में बीमारी और इसके लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और सार्कोइडोसिस के रोगियों की सहायता करना, रोगियों के लिए निदान, उपचार और सहायक चिकित्सा के महत्व पर बताना उनको कि किस तरीके से इस रोग को ठीक कर सकते हैं हम, और वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना.
For some, symptoms can go into remission also without requiring treatment. Others with sarcoidosis have persistent symptoms, some of which can be quite debilitating. There is no cure for this condition. Patients who suffer from chronic sarcoidosis may require specific medications to treat the symptoms. Treatment options may also include physical therapy and pulmonary rehabilitation. World Sarcoidosis Day plays an important role in raising awareness about a disease that is often, unfortunately, overlooked due to its rarity and similarity to other conditions. This day reminds us of the importance of early diagnosis, treatment and patient support, and contributes to scientific research aimed at finding more effective methods for managing sarcoidosis.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है. राज्य में चार धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. यात्रा मार्गों पर सफाई, पेयजल, बिजली व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है. यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए शासन प्रशासन सतर्क है. प्रदेश की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज नियमित रूप से यात्रा तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. यात्रा से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता साक्षी सिंह के पास.
उत्तराखंड में 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी. रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई और चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चार धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुचारू, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
जहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारे पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है. उसके साथ साथ यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. और चार धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिक भी है. चार धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है. और सरकार के साथ हमने सभी जो चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले उन सभी का भी सहयोग लेकर आगे.
प्रदेश के पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कई नई व्यवस्थाएं भी की है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो. श्री महाराज ने कहा है कि अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है. वही केदारनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए 31 मई तक सभी हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग पूरी तरह से भर चुकी है. इस संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आमजन से अपील करी है कि वे हेली टिकट केवल अधिकृत वेबसाइट www.helicopter.gov.in के माध्यम से ही बुक करें. पुलिस ने आगाह किया है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करें. उधर हरिद्वार जिले में आज बैसाखी के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के पवित्र घाटों पर स्नान कर पुण्य कमाया. बैसाखी का ये पर्व सिख समुदाय के लिए बेहद महत्व रखता है, लेकिन हरिद्वार में विभिन्न समुदायों के लोग इस अवसर पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे. सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार प्रशासन और पुलिस ने मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 9 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा था. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
To commemorate the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, a nationwide Jai Bhim Padyatra held on April 13, 2025 in Gangtok, the event was organized by the Sports and Youth Affairs Department in collaboration with the state NSS Cell and Nehru Yuva Kendra, aiming to spread awareness about Dr. Ambedkar's ideals and constitutional values among the youth. We have a report.
In observance of the directive issued by the Ministry of Youth Affairs, Government of India, a Jai Bhim Padayatra was organized today to commemorate the 134th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The event held in Gangtok was jointly conducted by the Sports and Youth Affairs Department, the State NSSL and Nehru Yuva Kendra, Gangtok. The initiative aimed to honor Dr. B.R. Ambedkar's legacy and instill constitutional value among the youth. The occasion was graced by Sri Raju Bhosnet, Minister, along with other distinguished dignitaries. The program commenced with the reading of the preamble of the Indian Constitution led by the minister, setting a solemn and inspirational tone for the day. Following the ceremonial flag off, over 130 youth volunteers from NSS and NYK enthusiastically participated in the Padayatra with placard and slogans echoing the principle of equality, justice and democracy. The march served as a powerful tribute to the architect of the Indian Constitution. The event highlighted the unwavering commitment of the youth to uphold the value envisioned by Dr. Ambedkar. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जय भीम पदयात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मुंबई में इस पदयात्रा का नेतृत्व युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने किया। अधिक जानकारी हमारी मुंबई संवाददाता से।
नरीमन पॉइंट से शुरू होकर मंत्रालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई इस पदयात्रा में 2000 से अधिक माय भारत स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। ये यात्रा न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता का सशक्त प्रदर्शन बनी। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कहा,
जिस तरह से हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान उस वक्त दिया था, जो विचार हमें दिए थे, जो संविधान हमें दिया है, उन्हीं विचारों के साथ आज युवा आगे बढ़े।
यात्रा के पीछे के उद्देश्य के बारे में और जानकारी दे रहे हैं महाराष्ट्र और गोवा में नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक प्रकाश कुमार मनुरे।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन परिचय को समझना और उनके जो संविधान, जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य है उनको समझने के लिए इस पदयात्रा का आयोजन किया गया था। इसके पूर्व NCPA में माननीय मंत्री महोदय द्वारा और अन्य अतिथियों के द्वारा कुछ युवाओं ने जो विशेष अपने क्षेत्र के अंदर कार्य किए गए थे उनको सम्मानित किया।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रेरणादायी विचारों को दर्शाते श्रद्धांजलि कोने, सामाजिक न्याय पर आधारित स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और प्रतिज्ञा स्थलों ने इस पदयात्रा के माहौल को और जीवंत और सार्थक बना दिया। परिक्रमा के लिए प्रार्थना के साथ मैं अंकिता आप्टे, मुंबई।
In Jammu and Kashmir, the mustard production is expected to record an estimated increase of 36,000 metric tons in comparison to last year production in Kashmir region. This significant rise in yield is helping reduce the region's dependency on imported mustard oil. Experts say around 40% of the total mustard yield is converted into oil, a report by our Srinagar correspondent.
Farmers across the valley have reported higher yields compared to last year, generating optimism for continued growth in the sector. South Kashmir's Anantnag district leads with highest cultivation among 10 districts of Kashmir Valley. Talking to Akashwani News Srinagar, Joint Director Agriculture Kashmir Sartaj Ahmed said,
140,000 hectare pe hame expected yield hai 143,000 metric tons with an average productivity of 1.02 metric tons. It is because of two main programs. एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, दूसरा है हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान में प्रमोशन ऑफ ऑयल सीड्स। जो इस साल की हमारी प्रोडक्शन है वो 47,347 मेट्रिक टन है। अगर एज्यूम हम कर लेते हैं 33% ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, जो कोई 946 करोड़ रुपया बनता है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, तो इकोनॉमी में हमारे 9.5 अरब रुपया एड हो गए हैं GDP को सिर्फ वैली की तरफ से। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जब काफी तादाद में हमारा ऑयल शेड निकलेगा, अकॉर्डिंगली TL भी निकलेगा ज्यादा, तो मार्केट प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, कमी काफी होगी और वी आर trying to be self-sufficient in oil production.
The expansion in cultivation area and the use of improved mustard seed varieties is being considered major factors for increase in mustard production this year. Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
From the north, we go over to the south, where the Kerala government to launch a special campaign to enroll migrant workers' children in schools and improve their access to education and welfare services. A report.
In a bid to tackle the educational marginalization of children of migrant workers, the Kerala state government will launch a month-long outreach campaign this May, traveling directly to migrant settlements to ensure every child is enrolled in school. The decision was taken after a high-level meeting that highlighted the persistent educational backwardness among children of migrant workers who often miss out on formal schooling due to frequent migration and poor access to public services. The campaign will utilize the services of representatives from local self-institutions, Kudumbashri workers, teachers from nearby schools and members of parent-teacher associations. Chief Minister Pinarayi Vijayan said that a comprehensive educational program for the children of migrant workers would be announced soon. State Education Council, CERT, will finalize the plan by April 30th. To ensure continuity of education for children from migrant worker families who move seasonally, a registration system will be established in the areas they relocate. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In IPL cricket, Rajasthan Royals were 127 for the loss of 3 wickets in 16.1 overs against Royal Challengers Bengaluru at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur earlier. Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to bowl. Another match of the event today, Delhi Capitals will lock horns against Mumbai Indians at Arun Jaitley Stadium in Delhi this evening. The match will begin at 7:30 p.m.
अब चलते हैं आजादी के सफर पर.
On the 13th of April 1919, one of the most brutal episodes of Indian freedom struggle, the Jallianwala Bagh massacre, took place. The incident marked a turning point in India's struggle for independence.
The Rowlatt Act was passed on 10th of March 1919, authorizing the government to imprison or confine without a trial any person associated with nationalistic activities. This led to nationwide unrest. This act was termed as Black Act by nationalist leaders. Mahatma Gandhi initiated Satyagraha to protest against the Rowlatt Act and published an article called Satyagrahi on 7th of April 1919, describing ways to oppose the Rowlatt Act.
The British government issued orders to prohibit Gandhiji from entering Punjab and to arrest him if he disobeyed the orders. Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, the two prominent leaders who were a symbol of Hindu-Muslim unity, organized a peaceful protest against the Rowlatt Act in Amritsar. When the two leaders were arrested on April the 9th, 1919, the people marched to the deputy commissioner's residence the next day to demand their release. They were fired upon by the police and many people were injured. The Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, directed the officers to suppress all opposition.
13th of April 1919, on the day of Baisakhi, people had gathered at Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi, in spite of the orders prohibiting any assembly. At the meeting, two resolutions were to be discussed. One, condemning the firing on April the 10th, and the other requesting the authorities to release their leaders.
And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence.
When the news reached the police, the tyrant Brigadier General Reginald Dyer headed to the Bagh with his troops. He entered the Bagh, deployed his troops and ordered them to open fire without giving any warning.
Should we issue a warning, sir?
They've had their warning. No meetings.
People rushed to the exits, but Dyer directed his soldiers to fire at the exit. The indiscriminate firing continued for 10 to 15 minutes and it ceased only after the ammunition had run out. Over 1,650 rounds were fired.
The total estimated figure of the dead as given by General Dyer was 291. However, other reports, including that of a committee headed by Madan Mohan Malviya, put the figure of dead at over 500.
As the news of the massacre spread across the nation, Gurudev Rabindranath Tagore renounced his knighthood.
General Dyer's actions on the day of the massacre received a prompt acknowledgement from the Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, who at once wired to him,
"Your action is correct. Lieutenant Governor approves."
Both the British officers, Reginald Dyer and Michael O'Dwyer, faced violent criticism. On 14th of October 1919, the Disorders Inquiry Committee, also known as the Hunter Commission, was formed to inquire about the massacre. The commission only censured Dyer for his actions and asked him to resign from his appointment as brigade commander.
But the fire of revenge was alive in Indian revolutionaries. The barbaric Brigadier General Reginald Dyer died in 1927 due to a stroke. But the then Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, had to face the wrath when 21 years after the Jallianwala Bagh massacre, Michael O'Dwyer was shot by the revolutionary freedom fighter Udham Singh on the 13th of March 1940 in London.
Mr. Dyer!
After independence, a memorial was set up by the Government of India in 1951 at Jallianwala Bagh to commemorate the spirit of Indian revolutionaries and the people who lost their lives in the brutal massacre. It stands as a symbol of struggle and sacrifice and continues to instill patriotism amongst the youth. In March 2019, the Yaad-e-Jallian Museum was inaugurated, showing the account of the massacre.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की पुण्यतिथि है। वे रंगमंच और सिनेमा की अप्रतिम प्रतिभा थे। बलराज साहनी की रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में समान दिलचस्पी थी। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले फड़ी मजुमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। वर्ष 1953 में बिमल राय के निर्देशन में बनी फिल्म दो बीघा जमीन बलराज साहनी के करियर में अहम पड़ाव साबित हुई। फिल्म दो बीघा जमीन की कामयाबी के बाद बलराज साहनी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे।
Today is the birth anniversary of Samuel Barclay Beckett, the Irish writer of novels, plays, short stories and poems. Writing in both English and French, his literary and theatrical work features bleak, impersonal and tragicomic episodes of life, often coupled with black comedy and literary nonsense. A major figure of Irish literature and one of the most influential writers of the 20th century, he is best remembered for his play Waiting for Godot, 1953, as one of the last modernist writers. He was a key figure in what Martin Eslin called the theatre of the absurd. For his lasting contribution, Beckett received the 1969 Nobel Prize in Literature. Today is also the birthday of Albert Lawrence Green, Al Green, the American singer-songwriter, pastor and record producer, best known for recording a series of soul hit singles in early 1970s, including Tired of Being Alone, I'm Still in Love with You, Love and Happiness, Take Me to the River, Let's Stay Together. He was inducted into Rock and Roll Hall of Fame in 1995.
आज हिंदी फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक की जयंती है। सतीश कौशिक की पहली बॉलीवुड फिल्म मासूम थी। उन्हें 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से फिल्म अभिनेता के रूप में पहचान मिली। उनके इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया।
मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनीता को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।